أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. توحید ربوبیت میں ہماری بحث دوسری دلیل میں چل رہی تھی، اور دوسری دلیل کل آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی تھی. اس کا محتوی اور معنی کیا ہے، اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا. علامہ کی فقط عبارت پڑھنا جو ہے وہ باقی رہ گیا تھا. آج اس عبارت کو کامل کرتے ہیں اور اگلے اپنے مطلب میں وارد ہو جاتے ہیں. علامہ جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 132 میں تدبیر کو اس طریقے سے معنی کرتے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ وہ یہ ہے کہ تعقیب حادث بحادث آخر، کہ ایک حادث کو دوسرے حادث کے ساتھ اس طریقے سے رکھنا، على نظم و ترتیب، یعنی اس نظم اور ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا اور ملانا، کہ یؤدی الی غایات حقہ، کہ یہ نظم اور ترتیب کیا ہے، حقیقی جو ہدف و غایت ہے اس تک پہنچا دے. فَالتَّدْبِيرُ هُوَ الْخَلْقُ وَالْإِيجَادِ، پس تدبیر حقیقت میں کیا ہے؟ خلق اور ایجاد ہے. بِاعْتِبَارِ قِيَاسِ الشَّيْءِ إِلَى آخِرِهِ مِثْلِ، إِلَى آخِرِ مِثْلِ، اس اعتبار سے کہ ایک چیز کو ہم دوسری چیز کی طرف، جو اسی طریقے کی ہے، اسی مثل ہے، اس کی طرف جب ہم قیاس کر رہے ہوتے ہیں. وانضمام ہی الیہ، اور جب ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ضم کر کے جو ہے اس کو اعتبار کر رہے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو خلق و ایجاد ہی ہے تدبیر. فلیس وراء الخلق والایجاد شیئن منہ، اصلا تدبیر خلق و ایجاد سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، جس طریقے سے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا. خوب، جب خلق اور تدبیر ایک ہی چیز ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پس خدا ایک ہی ہے. ایک اور عبارت جو علامہ اسی کے تسلسل میں ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ تدبیر جو ہے وہ حتمن جو ہے وہ خدا کی طرف پلٹتی ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ خدا کے علاوہ جو ہے وہ ایجاد نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ خدا اس کو جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے، مخلوق ہے اس کی. القائم بہ المملوک لہ، کیونکہ وہ شے مخلوق خدا ہے اور اسی کے ذریعے قائم ہے اور اسی کی ملکیت ہے. لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا، وہ شے اپنی ذات میں کسی چیز کی مالک نہیں ہے، نہ نفع کی نہ نقصان کی. ومن المحال، پس محال ہے قیامہ بشیء من تدبیر امر نفسہ و غیرہ، پس جب یہ کسی بھی چیز کی مالک نہیں ہے یہ شے، تو محال ہے کہ یہ اپنی تدبیر کرے یا اپنے علاوہ کسی اور چیز کی تدبیر کرے. بحیث یستقل به مستغنیا فی امره عنہ تعالی، یعنی اس طریقے سے کہ وہ مستقل ہو اپنی تدبیر کرنے میں یا اپنے غیر کی تدبیر کرنے میں مستقل ہو اور خدا کی اس کو ضرورت نہ ہو، ایسا نہیں ہے، محال ہے. وہذا هو الحق الذي لا لعب فيه والجد الذي لا هزل فيه، کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی لہو و لعب اور مذاق والی کوئی بات نہیں ہے. بس یہاں تک ہمارا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر چیز کا رب ایک ہے. علامہ نے اس تعبیر کو جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 27 پہ یوں ذکر کیا ہے کہ رب کل شیء، اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا رب ہے. ولا رب غیرہ، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. کما انہ موجود و موجد کل شیء، موجود و کل شیء، جس طریقے سے خدا ہر چیز کو وجود عطا کرنے والا ہے. ولا موجود غیرہ، اور خدا کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے. کہ یہ ایک مطلب کی طرف اشارہ ہے، عرفانی مطلب کی طرف ہے، کہ یہ ابھی مقام نہیں ہے کہ اس کو وضاحت کیا جائے کہ وہ ہر چیز کا موجود ہے और उसके अलावा कोई मौजूद नहीं है। इससे क्या मुराद है कि यह अभी हमारे मौरद बहस नहीं है। ये दो दलीलें आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। इसके अलावा भी अल्लामा ने मुतअद्दिद दलीलों को जिक्र किया है अपनी किताब अलमीजान में। मैं इख्तिसार की खातिर उन तमाम दलीलों को जिक्र नहीं करता, एड्रेस आपको दे देता हूं, आप इन एड्रेस की तरफ रजू करें तो आपको बाज दलीलें वहां पर मिल जाएंगी। मसलन आप अलमीजान के अंदर जिल्द नंबर एक सफा नंबर 9 की तरफ रजू करें, वहां पर भी एक दलील मौजूद है। जिल्द नंबर एक सफा नंबर 48 पर भी मौजूद है तौहीद रबूबियत के बारे में, मतलब जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 57 के अंदर भी दलील मौजूद है तौहीद रबूबियत के इस बात में। और इसी तरीके से जिल नंबर 12 और सफा नंबर 22 इसके अंदर भी तौहीद रबूबियत के हवाले से मतलब मौजूद है और दलील मौजूद है। और जिल नंबर 16 और सफा नंबर 15 के अंदर भी तौहीद रबूबियत के बारे में मतलब मौजूद है, आप उसकी तरफ रजू करें तो आपको मुख्तलिफ मतालिब जो है वो मिल जाएंगे। इसके बाद जो है रिवायात नकल की अल्लामा ने, क्या आप मुताला कर लेंगे उसमें असल मतलब जब खत्म हो जाता है। अभी तौहीद रबूबियत में एक आखिरी मतलब जो है वो जिक्र करते हैं और हमारी ये बहस तौहीद रबूबियत वाली खत्म हो जाएगी। वो ये है कि एक एतराज पैदा होता है कि अभी तक आपने ये साबित की कर दिया मुतअद्दिद दलीलों के जरिए कि इस कायनात का मुदब्बिर और रब एक ही है, लेकिन हम जब कुरान की तरफ रुजू करते हैं तो हमें ये मतलब भी वजाहत के साथ मिलता है कि इस कायनात को तदबीर करने वाले गैरुल्लाह भी हैं। बाज मसलन मलाइका के बारे में इरशाद खुदावंदी इस तरीके से है, सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 5 उसमें फरमाया है फल मुदब्बिराति अमरा, यानी मलाइका कायनात के उमूर को तदबीर करते हैं, पस मलाइका को मुदब्बिर कहा गया है। इसी तरीके से मसलन आयत सूरह अनआम की आयत 61 के अंदर अब रजू करें वहुवल काहिरु फौका इबादिह, खुदा जो है सबसे बुलंद है, वयुरसिलु अलैकुम हफजतन, और वो तुम्हारे ऊपर क्या है हाफिजों को भेजता है, हत्ता इजा जा अहदकुमुल मौत, हो जब एक की मौत आ जाती है तवफत हो वो रसूलना, तो वो हमारे जो रसूल हैं जो भेजे हुए हैं वो उसको ले लेते हैं, वहुम ला युफर्रितून, और वो अपनी जिम्मेदारी में जो है वो कोताही नहीं करते। अब यहां पर क्या है इरसाले हफ़ज़ा, हाफिज की ताबीर इस्तेमाल की गई है, और हाफिज होना तदबीर के जरिए ही होता है, यानी अगर कोई इंसान किसी की हिफाजत करना चाहता है तो क्या करता है मुख्तलिफ तदबीरें करता है, इस तदबीरों के जरिए वो उसकी हिफाजत करता है। बस अगर मलाइका हाफिज हैं इंसान के, इसका मतलब है वो तदबीर कर रहे हैं इंसान की इस हयात और जिंदगी को। बस कुरान ही की रूह से हमें ये बात मिलती है कि गैरुल्लाह में बाज ऐसी हस्तियां हैं कि जो इस कायनात की तदबीर कर रही हैं। तो आप एक तरफ से तौहीद रबूबियत कुरान से साबित कर रहे हैं, अक्ल और बुरहान से साबित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें कुरान के अंदर जो है ये मिलता है कि मुदब्बिर और भी हैं, तो ये कैसे आपस में जमा हो सकते हैं। ये एतराज जहन में आता है हर इंसान के जो ये मुताला करता है आयात का। जवाब क्या है उसका? जवाब इनता आसान सा है, हम पहले इसकी तरफ जब वो इशारा कर आए हैं तौहीद खालकियत के अंदर जाकर, और मैंने जब तौहीद रबूबियत को बयान किया तो वहां भी तफसील से इस मतलब की तरफ इशारा किया है। वो ये कि कुरान कभी भी ये बात नहीं कहना चाह रहा कि इस कायनात के अंदर तदबीर करने वाला हर हालत में हर तरीके से फकत और फकत खुदा की जात है, वला गैर और कोई नहीं है, बल्कि कुरान इस बात को साबित करना चाह रहा है कि इस्तिक्लाली तौर पर फकत रब है, फकत खुदा रब है, इस्तिक्लाली तौर पर गनी फकत खुदा की जात है और इस हर चीज उसकी अपनी है। تدبیر کائنات مستقل طور پر فقط خدا انجام دے سکتا ہے، باقی اگر کوئی تدبیر کائنات کے اندر اپنا کردار و نقش رکھتا ہے تو وہ اذن الہی کی وجہ سے ہے، نہ کہ خدا کے مقابل میں ایک الگ مدبر کی صورت میں، نہ مدبر کائنات فقط خدا کی ذات ہے مستقل طور پر، اور باقی اگر مدبر ہیں، مثلا ملائکہ کو اگر مدبر بنایا ہے تو وہ خدا نے بنایا ہے، اگر اذن الہی شامل حال نہ ہو تو یہ مدبر نہیں بن سکتے اصلا. اس کائنات کا نظام بنایا خدا نے ہے اور تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، لیکن اسباب کے ذریعے، نہ کہ ہر کام خداوند متعال ڈائریکٹ انجام دیتا ہے، نہ، بلکہ وسائط کے ذریعے انجام دیتا ہے، اسباب کے ذریعے اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور اس اسباب کے اندر ایک سبب ملائکہ ہے، اور ان کی تدبیر جو ہے وہ اذن الہی کی وجہ سے ہے. بس قرآن جس چیز کی نفی کر رہا ہے وہ تدبیر کرنا مستقل طور پر اس کی نفی کر رہا ہے، لیکن قرآن جو غیر اللہ کے لیے تدبیر ثابت کر رہا ہے وہ اذن الہی کے ساتھ ہے، اذن الہی کے ساتھ ہے. خالقیت میں بھی ایسے ہے. بس اگر بعض روایات کے ذریعے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کائنات کی تدبیر میں آئمہ علیہ السلام نقش رکھتے ہیں، تدبیر کائنات میں ان کا کردار ہے، تو وہاں پر ان کی تدبیر اذن الہی کی وجہ سے ہے، خدا نے اذن دیا ہے ان کو، مستقل طور پر مدبر نہیں ہیں، تدبیر استقلالی نہیں رکھتے، اور جو بھی تدبیر استقلالی نہ رکھتا ہو اس کو رب نہیں کہہ سکتے. بس رب خدا کی ذات ہے فقط، اور باقیوں کی جو تدبیر ہے وہ اذن الہی کی وجہ سے ہے. جواب اس کا یہ ہے، مثلا علامہ نے ملائکہ کی جو فل مدبرات امرہ کی جو آیت ہے اس کے ضمن میں ملائکہ کی تدبیر کے حوالے سے یوں مطلب بیان کیا ہے اور کہا کہ یہ توحید ربوبیت کے منافی نہیں ہے. اس کو علامہ نے جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 182 میں یوں تفصیل سے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں توسطہم بینہ تعالی و بین الحوادث اعنی کونہم اسبابا تستند الیہ الحوادث استناد الحوادث الی اسبابها القریبۃ المادیہ، کہ ملائکہ جو خدا اور اس جو افعال و حوادث ہیں اس کائنات کے اندر، اس کے درمیان واسطہ ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ اسباب ہیں اور حوادث کو نسبت دی جاتی ہے ملائکہ کی طرف. کیوں؟ کیونکہ یہ اسباب قریب ہیں. مثلا اب آگے مثال دیں گے علامہ، مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. مثلا آپ اگر لکھنا چاہیں ورقے کے اوپر تو آپ قلم استعمال کریں گے، اپنے ہاتھ کے ذریعے لکھیں گے اور لکھ آپ رہے ہوں گے. تو اب یہاں پر سب سے قریب سبب اور علت کون ہے لکھائی میں؟ قلم ہے. اور قلم کے بعد قریب علت کون سی ہے؟ ہاتھ ہے. اور ہاتھ کے بعد علت کون ہے قریب؟ جو ہاتھ کے قریب ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان کا اپنا نفس ہے، اپنی ذات ہے. بس قلم جو ہے وہ علت قریبہ کہلائے گی اور نفس انسان جو ہے وہ علت بعیدہ کہلائے گی، یعنی دور ہے، بعید ہے. تو ملائکہ بھی اگر نظام کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں، یعنی ملائکہ اس फेल की निस्बत क्या है जो खारिज में तहकुक पैदा किया है, मसलन बारिश जो हुई है, बारिश के बारे में हमारे पास रिवायात हैं कि मलाइका मुवक्किल हैं बारिश के ऊपर, तो बारिश एक फेल है, इसकी इल्लत करीबा कौन है, मलाइका है, लेकिन इन मलाइका के ऊपर भी कोई इल्लत है, हां खुदा है, उसी की इज्न से काम अंजाम दे रहे हैं, बस खुदा इल्लत बईदा कहलाएगा और मलाइका इल्लत करीबा कहलाएंगे, बस ये सबब है, सबब करीब होने की वजह से ये सबब कहलाते हैं, बारिश खुदा नाजिल कर रहा है लेकिन किसके सबब से, मलाइका के सबब से, देखें कौनहुम असबाबन, मलाइका असबाब हैं, तस्तनदु इलैहिल हवादिस, और हवादिस की निस्बत जो दी जाती है इनकी तरफ, किस क्या सूरत हाल है उसकी, इस्तनाद अल हवादिस इला असबाब हल करीबा अल मादिया, ये उसी तरीके से जैसे हवादिस की निस्बत दी जाती है उनके असबाब करीबा की तरफ के जो मादी हैं, जैसे कि मिसाल दी कलम हादिस करीब है और मादी है, फइन सबबियत तूलियत ला अर्जिया, मलाइका की सबबियत तूली है न के अर्ज में है खुदा के मुकाबले में है खुदा के, ए इन सबब अल करीबा सबबुन लिल हादिस, जो इल्लत करीबा हो वो इल्लत होती है उस फेल की के जो हादिस हुई है, जो इजाद हुई है, मसलन बारिश अगर खारिज में आई है इसकी इल्लत करीबा कौन है, मलाइका, व सबबुल बईद सबबुन लिल सबब, और सबब व इल्लत बईदा क्या है, वो सबब है इस इल्लत करीब के लिए के जो क्या है बारिश का सबब बन गया, यानी मलाइका, यानी मलाइका बारिश का सबब बन रहे हैं और मलाइका का सबब कौन बन रहा है, खुदा बन रहा है, और मलाइका जो तासीर कर रहे हैं बारिश के अंदर वो तासीर भी कौन ईजाद कर रहा है, खुदा ईजाद कर रहा है, कमा ला युनाफी तवस्सुतुहुम वस्तिनादुल हवादिस इलैहिम इस्तिनादुल हवादिस इलैहि, वकौनहु हुवस सबबुल वहीद लहा जमीअन अलामा यक्तजी है तौहीद रुबूबिया, इसी तरीके से फरमाते हैं कि मलाइका का वासिता, मलाइका वासिता बने और हवादिस की निस्बत मलाइका की तरफ दी जाए, तो ये मुनाफी नहीं है इस बात से कि हम क्या करें हवादिस की निस्बत जो है वो खुदा की तरफ दें, इबारत यूं होगी कमा ला युनाफी तवस्सुतुहुम वस्तनादुल हवादिस इलैहिम इस्तनादल हवादिस इलैहि तआला, अगर हम बारिश की निस्बत किसकी तरफ, मलाइका की तरफ देते हैं, तो ये इस बात के मुनाफी नहीं है कि हम बारिश की निस्बत जो है वो खुदा की तरफ दें, मुनाफी नहीं है, बल्कि हम बारिश की निस्बत मलाइका की तरफ भी देते हैं और बारिश की निस्बत जो है वो खुदा की तरफ भी देते हैं, क्यों, क्योंकि वो करीब हैं मलाइका और खुदा जो है इल्लते बईदा शुमार होगी, वह कौन हो सबबुल वहीद लहा, खुदा ही है कि जो सबब है और खुद सबब वाहिद है किसके लिए, इन हवादिस के लिए, जमीअन तमाम हवादिस के लिए, क्योंकि हम जो है वो तौहीद रबूबियत को साबित कर चुके हैं, तौहीद रबूबियत का इख्तिजा यही है कि तमाम हवादिस का सबब और इल्लत कौन हो, खुदा हो, फइन सबबियता तूलियतुन कमा समिता, और ये सबबियत जो मलाइका या गैर मलाइका के लिए साबित की जा रही है ये तूली है ना कि अर्जी, वला यजीद इस्तनादुल हवादिस इलल मलाइका इस्तनादहा इला असबाबिहा तबीईया अल करीबा, कहते हैं कि मलाइका की तरफ जो निस्बत दी जाती है हवादिस की वो उसी तरीके से है जिस तरीके से हम क्या है असबाब करीबा की तरफ निस्बत देते हैं हवादिस की, मतलब लिखाई की जो निस्बत है हम कलम की तरफ देते हैं कि कलम ने लिखा है ये, क्योंकि वो इल्लत करीब है उसकी, इसी तरीके से हम मलाइका को बारिश की मसलन क्या इल्लत बना देते हैं, ये इसी तरीके से है, वक़द सदक अल कुरान करीम इस्तना दल हवादिस इलल हवादिस तबीईया, और कुरान इस बात को सही करार देता है किस बात को कि हवादिस जो है वो हवादिस तबीआ की तरफ जो है मनसूब है, कमा सदक इस्तनादुहा इलल मलाइका, इसी तरीके से अल्लाह कुरान जो है वो हवादिस की निस्बत मलाइका की तरफ से भी तरफ भी देता है कि मलाइका सबब है इन हवादिस के, मतलब तो बारिश की निस्बत देता है, मौत की निस्बत देता है, इस किस्म के जो हवादिस हैं मौत हो गया बारिश हो गया और तमाम चीजें, मतलब बच्चों बच्चे की विलादत में जो है वो मलाइका की तरफ निस्बत दी गई है, बच्चों की शिक्ल शमाइल बनाने में जो मलाइका की तरफ निस्बत दी गई है, तो ये सबब हैं सारे इन चीजों के, लेकिन उनकी असबाब क्या है, सबब करीब होने की वजह से वो सबब हैं और इज़्न इलाही की वजह से हैं, वाइला
असल में काम जो है वो खुदा कर रहा होता है। वलैस लिशैइन मिन अल असबाब इस्तिक्लालुन क़िबालहु तआला हत्ता यनक़ते अनहु, किसी भी चीज के अंदर जो सबबियत है वो इस्तिक्लाली नहीं है, खुदा के मुकाबिल नहीं है ताकि हम ये कहें कि वो खुदा से मुनक़ते है और जुदा है अपनी सबबियत के अंदर। फयमनउ ज़ालिक इस्तिनादु मा उस्निदा इलैहि इलल्लाहि तआला अला मा यकूलु बिहिल वसनिया, खुद वसनिया जिस अकीदे के कायल थे खुदा और कुरान जो है वो उसकी नफी करता है, वो क्या अकीदा था, मिन तफवीज ही तआला तदबीर अल अम्र इलल मलाइकतिल मुकर्रबीन, कि खुदा ने मलाइका को क्या कर दिया है, कायनात का अम्र उनके सुपुर्द कर दिया है और खुद जो है वो बैठ गया अलग से, अब काम जो है वो मलाइका अंजाम दे रहे, खुदा का कोई दखलो तसरुफ नहीं है उसके अंदर आकर, वो मुस्तकिल है अपनी तदबीर में ना। ये कुरान फतोहीदुल कुरानी यनफी अल इस्तिक्लाल अन कुल्ले शय इन मिन कुल्ले जहतन, तोहीद कुरानी इस्तिक्लाल की नफी करती है, कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं है, किसी भी जहत से मुस्तकिल नहीं है, अपनी जात में मुस्तकिल नहीं है, अपने अफआल में मुस्तकिल नहीं है, अपने सबबियत में मुस्तकिल नहीं है, किसी भी चीज में मुस्तकिल नहीं है। ला यमलिकून लि अनफुसिहिम नफअन वला ज़र्रन वला मौतन वला हयातन वला नशूरा, ये अशिया जो है अपनी जात में ना नफे की मालिक है, ना जरर की मालिक है, ना मौत की मालिक है, ना हयात की मालिक है, ना ही नशर की जो है वो मालिक है। فمثل الاشياء في استنادها الى اسبابها المترتبه القريبه والبعيده وانتهائها الى الله سبحانه بوجه بعيد كمثل الكتابه يكتبها الانسان بيده وبالقلم فالكتابه استناد الى القلم। فرماتے ہیں کہ یہ مثال جو ہے اگر ہم سمجھانا چاہیں کہ یہ اشیاء جو ہیں یہ کیا ہیں, इल्लत व सबब बन रही हैं अफआल के लिए, मसलन जैसे मिसाल दिया आपको कि मलाइका बारिश की सबब बन रही हैं, आग जो है वो हरारत की सबब बन रहा है, इस तरीके की जो सबब, पानी जो है वो ठंडक की सबब बन कर सबब बन रहा है, इनको सबब कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये करीब हैं, मतलब ठंडक के करीब पानी है और इस पानी को खल्क करने वाला खुदा है, बस सबब करीब जो है वो पानी है, सबब बईद जो है वो कौन है, खुदा की जात है। फरमाते हैं कि और खुदा की तरफ निस्बत देना उसको इल्लत बईदा के उनवान से, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हम किताबत में क्या करते हैं, किताबत की निस्बत कलम की तरफ देते हैं, बस कलम के बारे में हम कहते हैं कलम ने लिखा, निस्बत दे सकते हैं हम। मसलन इससे बेहतर मिसाल मैं दूं आपको, आंख ने देखा मैंने देखा, हर दो सूरत में आप कह सकते हैं और कजिया दुरुस्त है ये, आंख ने देखा क्योंकि आपने आंख के जरिए देखा और इल्लत करीब देखने की कौन है, ये आंख है, और देखा किसने है, मेरे नफ्स ने देखा है, बस उसकी इल्लत बईदा क्या है, मेरा नफ्स बनेगा आकर। मतलब इस तरीके से मुख्तलिफ मिसालें जो हैं वो बना सकते हैं। बस नतीजा तो ही रबूबियत का ये निकला कि इस कायनात के अंदर मुस्तकिल तौर पर तदबीर करने वाला और रब फकत खुदा की जात है, बाकी जो कायनात में तदबीर के अंदर नक्श व किरदार रखते हैं वो इज्न इलाही के मोहताज हैं, और जहां पर इज्न पाया जाता है उनको रब नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये कहा जा सकता है कि तदबीर कायनात में ये एक सबब के उनवान से हैं, और ये तौहीद रबूबियत का मतलब और मुहतवा है। ये मतलब हमारा यहां पर तमाम हो जाता है, बाकी मतलब इंशाल्लाह बाद में आपकी खिदमत में जिक्र करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।